आज सवेरे की मुरली सबको याद होगी, उस पे ही चर्चा करेंगे। बाबा एक सीन बनाए अपने सामने, बाबा शिव बाबा स्वयं भगवान सुप्रीम हमारे सामने खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। आज कई बार आया ना मुरली में ये, जो चाहे ले लो। तो क्या इरादा है हमारा, हर एक अपने से पूछें मेरा क्या इरादा है। जो चाहे सब कुछ ले लेना है या यथाशक्ति लेना है। कोई सोचे हम तो गृहस्थ में रहते हैं, बच्चे पोतरे पालना झंझट, हम तो सब कुछ नहीं ले सकते, वो तो समर्पित वाले ले सकते हैं। सोचना तो ये भी कहीं तक ठीक है, परंतु पूरा ठीक नहीं है। गृहस्थ वाले ले सकते हैं, बोलो, अगर चाहें तो। अगर उन चीजों को अपना लें, थोड़ी सी वो चीजें हैं जो बाबा कहते हैं, तो कमल फूल समान रहेंगे परिवारों में, और परिवार उनके लिए कीचड़ नहीं बनेगा। कमल फूल के साथ तो कीचड़ भी है, पर परिवार उनके लिए कीचड़ नहीं बनेगा, सुंदर बगीचा बनेगा, खुशबूदार बगीचा हो जाएगा। तो बाबा से हमें सब कुछ लेना है, स्वचिंतन करना है, सभी को आत्मचिंतन करना है, मुझे सब कुछ लेना है। और लास्ट में बाबा ने इसका सार भी बता दिया, याद में रहना माना सब कुछ लेना। वो तो एक छोटी सी लाइन में उत्तर है, पर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या क्या लेना है हमें उससे। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम किसके हाथ में, हमारे हाथ में, और वो है श्रेष्ठ कर्म। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प भी, श्रेष्ठ स्थिति भी, श्रेष्ठ प्योरिटी भी, हमारे मन की भावनाएं भी श्रेष्ठ, ये सब हमारे पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाती हैं और हमारा भाग्य श्रेष्ठ होता जाता है। बाबा ने बहुत अच्छी बात आज भी कही, अविनाशी भाग्य ले सकते हो पूरे जन्मों का, जो चाहे उससे लिया जा सकता है। क्या क्या हम लें उससे, हमें क्या चाहिए, हम इस पर भी थोड़ा चिंतन अवश्य करें। कल की मुरली पर भी ध्यान दें, तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी कोई होता ही नहीं, याद है। कौन कौन बड़े आदमी बैठे यहां देखूं मैं भी, बस थोड़े से धीरे धीरे बड़े बन रहे हैं। बड़े आदमी भगवान जिनकी पालना कर रहा है, जो भगवान के बच्चे बन गए, भाग्यवान युग, और जिनका भाग्य का सितारा स्वयं भाग्य विधाता चमका रहा है, साथ ही मिल गया भगवान का। सोच के देखो, 5000 वर्ष की पालन यात्रा पूरी हुई तो साथ किसका मिल गया, बोलो। अब बाबा है साथी, और फिर हो जाएगा, ये तब कहा था, अभी भी साथी है। जो उसको अपना साथी बनाएंगे, साथी तो वो सदाकाल का होता है ना, उसके संदर्भ में ये नहीं कहा जा सकता कि वो 2-4 साल का साथी है। जिन्होंने लंबा काल उसको साथी बनाया, वो अंत तक साथ निभाता है। पर इस महावाक्य का अर्थ ये है कि टीचर जब पढ़ाता है तो वो साथी होता है, अच्छी तरह पढ़ाता है, पढ़ने वालों को अच्छी तरह पढ़ना है, पर जब परीक्षा आती है तो टीचर लिखा नहीं देगा, साथ नहीं देगा। फिर तो उसे देखना है, मैंने जो पढ़ाया ये स्टूडेंट क्या करते हैं, कितने मार्क्स लाते हैं, तो साक्षी हो जाएगा विनाश काल में। और उस टाइम भी जिन्होंने लंबा काल उसको साथी बनाया है उनको उसके साथ का अनुभव होता रहेगा। बाबा का एक महावाक्य और हमारे कानों में गूंजना ही चाहिए, कल का, मैं तुम्हें जितनी ऊंची नजर से देखता हूं तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। बहुत सुंदर बात है, भगवान जब अपने बच्चों को देखता है तो कितनी महान नजर से देखता है, ये मेरे बहुत महान बहुत भाग्यवान मेरे जैसे मेरे कार्य को संपन्न करने वाले बच्चे हैं। देखो किसी को बहुत बड़ा काम करना हो दुनिया में, बड़ी कंपनी या बड़ी फैक्ट्री बड़े उद्योग लगाने हो और उसको 10-20 अच्छे साथी मिल जाएं जो उसके कार्य संभालने लगे सफल करने लगे उसके कार्यों को, तो कितना अच्छा होगा। भगवान को भी जब युग बदलना है तो कौन उसके साथी बने? विष्णु हम बने, बहने बने या नहीं, हम उसके साथी बने, और हम नहीं बने उसने बना दिया, बनाने से पहले हमें योग्य भी बना दिया। तो बिल्कुल उसके नजदीक के साथी हैं हम, जिनको बाबा कहते हैं राइट हैंड हो तुम। तो हमें अपने भाग्य को देखना है और अपने श्रेष्ठ स्वमान में आना है कि जिस ऊंची नजर से भगवान हमें देखते हैं, देखो कितने समीप आ गए, कहां हमारी पुकार थी, कहां छोटी मांगे थी, ये दे दो ये दे दो, ये भी अंदाज नहीं था कि वो सुन भी रहा है या नहीं, या पता था देगा या नहीं ये भी पता नहीं था, और अब सब स्पष्ट है। तो बाबा से सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेना है। भाग्य में क्या क्या चीजें होती हैं दुनिया में भी? धन बहुत अच्छा हो, धन से पहले तन, तन तन सुंदर भी स्वस्थ भी तन, फिर धन बहुत अच्छा हो, फिर परिवार बहुत अच्छा हो, मन तो सूक्ष्म चीज है परिवार भी बहुत अच्छा हो। और बोलो सुरेश भाई, कार्य कार्य भी बड़े हो, सम्मान हो, कार्य भी ऐसे हो हर कदम पे सफलता मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कार्य तो बड़े करते हैं लेकिन संघर्षों के बाद सफलता मिलती है, तो लोग कहते हैं भाग्य साथ नहीं देता, मेहनती तो बहुत हैं, बुद्धिमान भी बहुत हैं, पर भाग्य भी साथ देता होता तो कमाल हो जाता। किसी को भाग्य साथ देता है वो भाग्यवान होते हैं, उनका श्रेष्ठ भाग्य माना जाता है। देखिए बीमारी आती, आजकल देखो छोटी मोटी बीमारी आई बड़ी भी आई किसी की सहज ठीक हुई भाग्यवान माने जाते हैं, और किसी को छोटी बीमारी हुई और चल दिए वापिस। ये सब हम देखते हैं साक्षियों के। तो हमें भी बाबा से ऐसा श्रेष्ठ भाग्य लेना है कि जन्म जन्म हमारा तन भी बहुत सुदृढ़, मन भी बहुत ऊंचे विचारों वाला, धन की भी संपन्नता, कितना धन हो हमारे पास, कितना हो एम सिंह भाई, नहीं कितना, देते रहें इतना चाहिए या हमारा काम अच्छा चले उतना चाहिए? कौन कौन माताएं चाहेंगी देते रहें? अच्छा देते रहें, सच्चा धनवान वही है जो देता रहे, जिसका धन दूसरों के भी काम आए, धन भी इतना हो जन्म जन्म मिलेगा, परिवार अच्छे संबंध अच्छे, परिवार अच्छे हो लेकिन आजकल बहुत जरूरी हो गया है संबंध बहुत अच्छे हो, मधुर, एक दूसरे के प्रति स्नेह सम्मान हो, अपनापन हो, आजकल हो गया स्वार्थ, आजकल संबंधों में आ गया धन केवल, इससे मुक्त हो हम सभी। धन किसको बहुत मिलेगा? जन्म जन्म। सीधी सी बात सब जानते हैं, जो ज्ञान धन से यहाँ झोली भरेंगे, जो ज्ञान धन का बहुत दान करेंगे, हर जन्म में एक चीज और चाहिए हमें, श्रेष्ठ बुद्धि। मन के साथ बहुत सुंदर बुद्धि। ये बुद्धि भगवान से बुद्धि मांगते हैं ना, सरस्वती से भी विद्या मांगते हैं। ये बुद्धि हमें अब ज्ञान से मिल रही, रोज सवेरे मुरली सुनाकर बाबा हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। मुरली माना बांसुरी नहीं, ईश्वरीय ज्ञान देकर हमें बहुत श्रेष्ठ बुद्धि दे रहे हैं। सब देख सकते हैं हमारी बुद्धि चमक गई है। अपने यज्ञ में अगर आप उन लोगों के बारे में विचार करें जो अच्छे अच्छे गीत बना रहे हैं, जिन्होंने बनाए हैं, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिसने पहले से बहुत गीत बनाए और बहुत सुंदर गीत बनाए, वो केवल छठी सातवीं क्लास पढ़ा हुआ है, हैं अभी भी वो, आप जानते हैं उन्हें, मैं नाम नहीं लूंगा। अब जो गीत बना रहे हैं वो भी हाईली एजुकेटेड नहीं है, मीडियम पढ़े हुए हैं। कहां से बुद्धि में चमक आई? बाबा के, शिव बाबा के प्यार में मगन होने से कवित्व उभर आता है। कवित्व बहुतों के अंदर है, वो उभर जाता है जब प्रभु प्रेम में आत्मा मगन होती है। सूरदास कितना पढ़ा लिखा था, देखा था स्कूल का दरवाजा, तब स्कूल होते भी कहां थे। और उसका सूर सागर, सूर सरिता एमए में पढ़ाई जाती है, पीएचडी कर रहे हैं लोग उस पर, उसमें छंद और हिंदी साहित्य, हिंदी कवित्व के जो बहुत सारी चीजें हैं, अलंकार आदि, वो बहुत सुंदर हैं। और वो पढ़ा लिखा नहीं था, ब्लाइंड भी थे, नेत्रहीन, कहां से आई ये सब चीजें, सोचने की बात है। ये सब आत्मा में भरा हुआ होता है, रिकॉर्डेड है, पूर्व जन्मों से भी चला आता है कवित्व। और जब वो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुए तो वो जागृत हो गया। ऐसे लोग सोचते हैं द्वापर युग से, ये प्रश्न कई युवक आकर पूछते हैं, द्वापर युग से ये ज्ञान कैसे इमर्ज हो गया? अभी बाबा ने मुरली में कहा, मंदिर तुम बनाओगे, शास्त्र तुम लिखोगे, ये गड़बड़ सब तुमने की है। तो दो आए मेरे पास युवक, कैसे हम लोगों ने लिखा ये सब, क्या सचमुच हम ही थे वो? तो जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, ड्रामा का खेल भी है ये, तो उस टाइम जो कुछ हमने यहाँ सुना है, जो गहराई से अपने अंदर भरा है, वो जागृत होने लगता है। ध्यान में बैठते हैं, मग्न होते हैं, जब मनुष्य का चित्त शांत होता है, ये बात सभी को ध्यान देनी है, तो बुद्धि में जो कुछ भरा हुआ है वो जागृत होने लगता है। धर्म पिताओं के बारे में बाबा ने ये बात कही हुई है, आप में से मालूम होगी कईयों को, कि जो धर्म पिता हैं वो बाबा के पास बिल्कुल अंतिम समय में आएंगे, जब तुम अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप होंगे। तो जो ज्ञान तुम उन्हें देंगे वो उनके अंदर छप जाएगा, वही ज्ञान इमर्ज होगा उनके समय पर, और वही ज्ञान वो सबको देंगे। इसलिए धर्म पिताओं का ज्ञान संपूर्ण नहीं होता, लेकिन अगर सभी धर्मों का ज्ञान मिला दिया जाए तो संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। चारों जो बड़े धर्म हैं उन सब का ज्ञान मिला दिया जाए तो वो संपूर्ण ज्ञान बन जाएगा। जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, अगर आप स्टडी करें भिन्न भिन्न धर्मों की थोड़ी थोड़ी, तो पता चलेगा यहाँ की हर बात कहीं ना कहीं लिखी गई है, लेकिन उस बात को वो हाईलाइट नहीं कर पाए। हम मुस्लिम रिलीजन में है, भगवान कहाँ रहता है? खुदा सातवें सातवा कहा है, बात ठीक लिखी है, परंतु वो उसको हाईलाइट कर नहीं पाए कि वो सातवां आसमान है कहाँ। पांच तत्व, छठा सूक्ष्म वतन, सातवां ब्रह्मलोक। तो हम सभी अब बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं बुद्धि दाता से, हमें ज्ञान अपने अंदर समाते चलना है। इसलिए मुरली का बहुत आनंद लेना है, मुरली में बहुत एकाग्र चित्त होना है। मुरली इसलिए नहीं कि भगवान ने कहा रोज सुनो, भाई रोज सुननी पड़ेगी, पड़ेगी नहीं, उसका रस आ रहा हो हमें, वो बुद्धि के लिए बहुत श्रेष्ठ भोजन बन रहा हो, वो बुद्धि की पावरफुल खुराक है, उससे हम अपनी खोई हुई बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, विवेक प्राप्त कर रहे हैं, विजडम प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें करते रहना है। तो जन्म जन्म हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होगी, हम पढ़ाई लिखाई में होशियार रहेंगे। पढ़ाई लिखाई तो हमारे देखते देखते बढ़ी है ना, आगे अंग्रेज आए, उन्होंने तो एजुकेशन को बिल्कुल नष्ट कर दिया था भारत से। कहीं कहीं कॉलेज रखे थे बड़े शहरों में, छोटे प्राइमरी स्कूल भी नहीं थे, हाई स्कूल भी नहीं थे। हाई स्कूल किसी ने कर लिया तो उसका बड़ा सम्मान होता था, उन्होंने तो बिल्कुल ठप कर दिया था। भारत स्वतंत्र हुआ, कई संस्थाओं ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले, उसमें रामकृष्ण परमहंस की संस्था रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज और भी कुछ लोगों ने फिर देख देख कर। आर्य समाज ने तो उन दिनों में वो 3360 स्कूल कॉलेज खोले थे, बहुत अच्छा उनका ये योगदान रहा, क्योंकि जो महापुरुष हुए उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा को भारत से खत्म किया उसका कारण यही था कि भारत वाले अपनी कल्चर को, अपनी महानताओं को, अपने इतिहास को जान न सके। तो फिर से जो यहाँ महापुरुष हुए उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी मिसिंग हो गई है, तो फिर फटाफट खोले और हमारे देखते देखते पिछले 50-60 सालों में ही स्कूल और कॉलेज धूम मच गई। तो पहले भी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन बुद्धिमान होते थे। अब बीरबल कोई पढ़ा लिखा थोड़ा ही था, एमए की डिग्री थोड़ा ही थी उसके पास, बुद्धिमान था। तानसेन ने कहीं सीखा थोड़ा ही था गीत संगीत, लेकिन प्रसिद्ध था। अकबर भी अनपढ़ था, शिवाजी लिखना पढ़ना ही जानते थे, क्योंकि थी नहीं उन चीजों की जरूरत नहीं थी। तो बाबा बुद्धि दे रहा है, पढ़ाई अलग चीज है, बुद्धिमानी अलग चीज है या नहीं? आप देख सकते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान नहीं है और बहुत साधारण लोग अति बुद्धिमान है। तो विवेक अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज हो गई, दोनों को मिलना चाहिए। तो हम तन अगर श्रेष्ठ चाहते हैं हर जन्म में तो क्या करेंगे, तन को सेवाओं में लगा दें। आप सब लगा रहे हैं और बाबा का तो इतना सुंदर महावाक्य है, हड्डी हड्डी सुरेश भाई यज्ञ में लगा दो तो तुम बन जाओगे हड्डियों से मुक्त फरिश्ते। दधीचि ऋषि समान हड्डियां यज्ञ में लगा दो तो तुम बन जाओगे फरिश्ते। फरिश्ते हड्डी मास से मुक्त होते हैं। और ये देखा गया कि जो बहुत यज्ञ सेवा अच्छी करते हैं दिल से, उनकी बीमारियां भी जल्दी जाती हैं। देखो मेरा एक स्वप्न है, ज्ञान सरोवर वाले बहुत बैठे हैं, मेरा एक ड्रीम है भविष्य का, नजदीक का ही है, कि ज्ञान सरोवर ये बहुत सुंदर भूमि है या नहीं सुंदर भूमि बताओ। ये नहीं कि यहाँ कैसा कैसा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, यहाँ सब महान रहते हैं, यहाँ सब महान आत्माएं रहती हैं या नहीं? ऐसे वैसे लोग थोड़े से हुआ करते हैं, महान आत्माएं ज्यादा हैं, महान आत्माएं ही ज्यादा हैं। बता दूं स्वप्न मेरे साथ, आने वाला समय जब हमारे तीनों स्थान महान तीर्थ बनेंगे ना, भगवान के महावाक्य उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो मधुबन ऐसा महान तीर्थ बनेगा जहां आते ही डिवाइन फीलिंग हो लोगों को, हुआ करेंगी, साक्षात्कार होंगे, एकदम ये जादू की नगरी है, यहां हम आ गए हैं, डीप साइलेंस हो जाएगी। और मेरा ड्रीम है, मुझे भी लगता है ठीक तो होगा ही, आप सब उसमें करेंगे कि जो भी यहाँ आएगा निरोग हो जाए, समस्याओं से मुक्त हो जाए, तनाव से मुक्त हो जाए, लोग दुखी आएंगे रिलैक्स हो जाएंगे थोड़े ही समय में। तो ऐसे वाइब्रेशंस हम सबको यहाँ क्रिएट करने हैं, क्योंकि आने वाला समय कुछ और होगा। ये बाबा के तीनों स्थान, ऊपर के दोनों स्थान, नीचे तो फिर मेले ही मेले होंगे। मेले का महत्व अलग होता है, वहाँ वाइब्रेशंस अलग होंगे, लेकिन ये दोनों ऊपर के स्थान जो महान तीर्थ होंगे, लाइट हाउस होंगे, पीस हाउस होंगे, ये होंगे, मुझे साफ दिख रहा है। हम सब इसमें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाकर अपना योगदान देंगे। धन हमारे पास बहुत रहे जन्म जन्म, सोचो धन की बात हम कर चुके हैं, ज्ञान धन से स्थूल धन आता है। हमें सत्ता मिलती रहे जन्म जन्म, सत्ता क्या चाहिए उसके लिए, शक्तियां। आज बाबा कई बार कह रहे थे शक्तियां बाप से अधिकार में मिलती हैं, क्योंकि जिनका बाप ही सर्वशक्तिवान हो तो बच्चे कमजोर थोड़ा ही होंगे। बाप से वर्षा, बाप से अधिकार और सदगुरु से वरदान, आज बाबा ये दोनों बात बार बार कह रहे थे। भगवान और भाग्य याद करो, ये भी बहुत सुंदर बात थी। तो हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें योग से। मैं आपका ध्यान दिलाऊं, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगी कुछ और चीजें भी। हमने यहां कितनी खुशी प्राप्त की, हम जैसी खुशी, ब्रह्मावत्सो जैसी खुशी संसार में किसी को मिलती नहीं है। न धन से मिलती, न पद पोजीशन से मिलती, न परिवारों में मिल रही है, न अच्छे मकानों में मिल रही है, न साधनों में, न कारों में, न एसी में, कहीं नहीं। हमारी खुशी देखो सवेरे से ही शुरू हो जाती है, आंख खुलते ही प्रभु मिलन, फिर भगवान की अमृत बरसात होती है। बाहर बरसात भी हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, इधर बाढ़ आती है रोज, ज्ञान अमृत की वहां पानी की बाढ़ जो नष्ट कर रही है बहुत कुछ, और यहाँ अमृत की बरसात जो अमर बना रही है। तो हमारा सवेरे का टाइम ही खुशियों के भंडार लेकर आता है हमारे पास। सभी जानते हैं अच्छी तरह, रोज रोज सवेरे ही हमारे विचार बदलते हैं, महान विचार मिलते हैं रोज, कितना बड़ा भाग्य है। कहाँ दुनिया में लोगों को महान विचार मिलते हैं, व्हाट्सएप देखो क्या क्या लोग भेजते हैं। कई लोग तो उठते ही खोलना शुरू कर देते हैं, रात को क्या क्या माल आया, असली माल नहीं होता, गलत इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। सोते एंड भी दिन का उसी से करते हैं, देख रहे हैं क्या क्या आया है। ठीक है, कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, लेकिन जो बातें हमें मिलती हैं अच्छी, वो संसार में कहीं नहीं है। इसलिए सोने से पहले अव्यक्त महावाक्य देख लें जरा 5-7 मिनट भी, तो उठते ही हमारा चिंतन भी बहुत सुंदर चलेगा। तो हम खुशियों से अपनी झोलियां भरते चलें, जन्म जन्म खुशी का खजाना हमारा बहुत बड़ा भाग्य होगा। सब जानते हैं जिनके जीवन में खुशी है वही बहुत भाग्यवान है। और सब कुछ होते भी खुशी न हो तो लगता है भाग्य है नहीं। बहुत खुशी मिल रही है बाबा की, आपने भी देखा होगा अपने जीवन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुश रहते हैं और सबको खुश रखते हैं, उनका संस्कार होता है बचपन से। हमने भी देखा एक व्यक्ति गांव में, बिल्कुल सिंपल, पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, था भी अति काला, लेकिन बच्चे उसके पीछे पीछे, वो सबको हंसाता ही रहता, पता नहीं कहां कहां से सारा दिन कहानियां सुनाता रहता, सब खुश, जहां वो जाए खुशी खुश। तो देखो खुशी बहुत बड़ी चीज है ना। उसके पास पैसा नहीं था, वो मजदूरी करने वाला, छोटी आयु का पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा। दूसरी चीज हमें लेनी है दुआएं। दुआएं भी हमारे भंडार भरपूर करती हैं और हम दुआओं का तरीका जानते हैं। दुआएं देनी भी हैं और दुआएं लेनी भी हैं। और हम सबके साथ सबसे बड़ी चीज है इस समय मिल रही है हमें भगवान की दुआएं। देखो इसीलिए मुस्लिम रिलीजन में तो वो बात बात में यही कहते हैं खुदा से दुआ करो, दुआएं मांगते रहते हैं, दुआएं दुआएं। तो यहां हम सभी प्रैक्टिकल में भगवान की दुआएं ले भी रहे हैं और संसार को दुआएं दे भी रहे हैं। और हमारी दुआओं का एक बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप है सबके लिए शुभ भावनाएं, कल्याण की भावना। इस पे सभी बहुत ध्यान देंगे। अगर हमारे मन में कहीं थोड़ी बहुत नफरत है, किसी के लिए भी निगेटिविटी है, तो ये बड़ी सूक्ष्म बात बाबा ने सिखाई है, तो वो हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के मार्ग में दीवार है। हमारी श्रेष्ठ भावनाएं दूर दूर तक काम नहीं करती। और दूसरी बात मैं ये भी सुना दूं, दो चार बार आपको यहां सुनाई है, मैंपन का कितना निगेटिव इफेक्ट होता है। जिनके पास मैंपन बहुत है, मान लो हमारे यहाँ किसी में मेरा डिपार्टमेंट, वो उसके बाहर नहीं सोच सकते। किसी सेंटर वाले के पास है, मेरे ये सेंटर इतने, वो उसके बाहर नहीं सोचते। क्या होगा इससे? हमारे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे ना, वो उसी सीमा तक फैलेंगे बस। और अगर हम बेहद में हैं, हमारी स्थिति हमारे विचार इन सबसे ऊपर हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस सारे संसार में फैलेंगे। पुण्य कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। दो चीजें ये हुई, खुशी और दुआएं, और दो चीजें हैं पुण्य कर्म और हमारी प्योरिटी। प्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। पवित्र आत्मा इस संसार के लिए वरदान है। पवित्रता हमें पवित्रता के रूप में भी चाहिए, लेकिन बल के रूप में भी चाहिए। हम प्रकृति को भी पावन करते हैं इस पवित्रता से। दो युगों की गुलामी, माया की भी और प्रकृति की भी, पवित्र बनकर हम दोनों को गुलाम बना लेते हैं। आज बहुत अच्छी बात थी ना, बॉर्डर क्रॉस किया और दुश्मन के हवाले। इधर उधर भी बॉर्डर क्रॉस कर लें, पाकिस्तान में चले जाएं तो पकड़े जाएंगे। तो यहां भी हम बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं, मर्यादाओं का बॉर्डर, तो माया के हवाले हो जाते हैं। तो हमें पुण्य कर्म और प्योरिटी के द्वारा भी अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। देखो पूरे ही सृष्टि चक्र में पवित्रता से ही संसार चलता है। सतयुग त्रेता में हम सब देवी देवताओं की प्योरिटी, तो प्रकृति भी पावन है। द्वापर से किसकी प्योरिटी रही? धर्मात्माओं की। धर्मों में बहुत प्योरिटी थी, हर धर्म में बहुत सारे लोग पवित्र होते थे, और जो इम्प्योरिटी भी थी वो संयमित थी। एक आयु के बाद सबको पवित्र होना है। हमारे यहाँ पारसी बहुत आते हैं ना, एक ऑफिसर रहे हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर के आते हैं, नाम मुझे भूल रहा है, आसपी। मैंने उनसे पूछा आपके पारसी कितने रह गए भारत में? कहा 1 लाख बचे हैं बस। मैंने कहा क्यों? 3 लाख थे। कहा 1 लाख ही बचे हैं। मैंने कहा क्या बात है? कहा हमारे पारसी धर्म में अनेक लोग, लड़के लड़कियां ब्रह्मचर्य में रहते हैं, वो वहां की एक कॉमन प्रथा है, तो हमारी संख्या कम होती जा रही है। मैंने कहा फिर आपके जो नेता हैं वो सोचते नहीं है क्या कि संख्या गिर रही है, बढ़नी चाहिए, सब धर्म वाले तो ये सोचते हैं? का बिल्कुल नहीं। तो देखो छोटा सा धर्म लेकिन उसकी प्योरिटी और धर्मों को भी बल देगी ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर। हिंदू धर्म में तो बहुत प्योरिटी रही, ये तो अब 100 साल से खेल बिगड़ा, नहीं तो सबसे ज्यादा प्योरिटी हिंदू धर्म में भी थी। यहाँ के साधु संत और भी गृहस्थी और अनेक लोग पवित्र जीवन जिया करते थे। वो पवित्रता हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी शक्ति थी। और जब ये सब खेल समाप्त हो गया तो बाबा ने आकर स्थापना कर दी प्योरिटी की। कितना विरोध हुआ, शिव बाबा का विरोध हुआ, लेकिन बाबा की शक्ति तो अपरंपार है। अनेक आत्माएं पवित्र बनती गई और ये पवित्र आत्माओं का बहुत बड़ा कल्प वृक्ष तैयार हो गया है। अब हमारी प्योरिटी संसार के लिए और धर्म के लिए बहुत बड़ी ताकत है। पवित्र आत्माएं बहुत बड़ी ताकत होती है संसार के लिए, अपने देश के लिए, उससे नजदीक आए तो अपने परिवार के लिए। पुण्य कर्म हमें बढ़ाते चलना है और पुण्य कर्मों में हमें ध्यान देना है अब सूक्ष्म बातों पर। हमारे बोल से सबको सुख मिलता जाए, हम अपने कार्यों से, हमारे यहाँ सभी लोग के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उससे भी सबको सुख देते रहें। जितना हो अपने कार्यों से दूसरों को मदद करेंगे, उन्हें सुख देंगे तो दुआएं भी मिलेंगी और हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो पुण्य कर्मों पर ध्यान देना है, हमारे किसी बोल से, हमारे व्यवहार से दूसरों को कष्ट न पहुंचे। चाहे वे इकट्ठे सोते हों, एक कमरे में 5-7 सोते हैं ना, भाई आई एम सॉरी माताओं को एक बात कहनी है। कई माताएं थोड़ी देर तक बात करती हैं कमरों में, जरा ध्यान देंगे, दूसरे लोग थोड़ा परेशान होते हैं, वो थोड़ी पावरफुल भी होती हैं, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, कहेंगे तो तुम आउट। तो माताएं ध्यान दें 10:30 के बाद। फोन पे तो माताएं नहीं रहती, पर मुख का फोन ज्यादा चलता है। हम माताओं के पास बातें बहुत होती हैं, खत्म ही नहीं होती, चाहे सारी रात बैठे रहो। थोड़ा सा ध्यान देंगे, दूसरों को कष्ट ना हो। ये ध्यान देने की बात है कि अगर हमारे किसी व्यवहार से दूसरों को कष्ट हो रहा है, संकल्प चल रहे हैं, तो हमारे सूक्ष्म पाप बन ही रहे हैं। जो पाप जब हमारे सामने आते हैं तो जीवन में अनेक विघ्नों का मनुष्य को सामना करना पड़ता है। तो अपने व्यवहार से, अपने घर में, अपने जहाँ रहते हैं एक साथ नहाने धोने में ध्यान रखना है। देखो मैं तो बताऊं, जब हम लोग यज्ञ में आए, यज्ञ बहुत छोटा सा था, हमारे विश्वतन दादा थे, जानते हैं ना सभी, वो भी रोटी पकाने आते थे एक टाइम। सब बड़ों बड़ों को सब काम करने होते थे, केवल आनंद किशोर दादा को छोड़कर, क्योंकि वो बड़े थे, मैनेजर भी थे, तो सभी आते थे। तो हमें सिखाया करते थे, तुम्हारी एक रोटी भी जली ना, जो वो खाएगा उसको संकल्प हुआ ये तुम्हारा पाप होगा। मतलब इतना स्ट्रिक्ट हम लोगों को कर दिया गया था कि हमारे किसी भी कार्य से दूसरों को कष्ट न पहुंचे। खाना बनाया है ना, नमक ज्यादा डाल दिया ना, लोग खाएंगे तो सही, लेकिन तुम्हें दुआएं थोड़ा ही देंगे, ये भी पाप हो जाएगा। तो एक सूक्ष्म गति जो कर्म की है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लकड़ियों पे भोजन बनाते थे, आपको बता दूं, तो लकड़ियां कभी कभी जलते जलते बाहर तक भी आ जाती थी। तो ऐसे कोई बड़े आ जाते थे ना, कहते थे ये बाहर जल रही है, वेस्ट हो रहा है, इसमें पानी क्यों नहीं डालते। हम तुरंत उसमें पानी डालते थे जो बाहर जल रही, भले धुआं हो जाता था पर वो बाहर नहीं जलनी चाहिए, वेस्ट हो रहा है यज्ञ का। तो कहते थे कि अगर यज्ञ का थोड़ा भी वेस्ट हुआ, देखो यज्ञ में दिया किसने, हो सकता है किसी गरीब के 10 रुपए लगे हों, और वो तुमने वेस्ट कर दिया तो ये सूक्ष्म बोझ तुम पे चढ़ जाएगा। तो ये कर्मों की बहुत सूक्ष्म गति है, हर चीज का हम ध्यान दें, यज्ञ का कुछ भी वेस्ट ना हो। याद है पीछे की मुरली, बाबा कणे कणे का देता भी घना है और कणे कणे का हिसाब भी घना ले, घना माना बहुत ज्यादा, ये हिंदी हरियाणा और यूपी का शब्द है, कणा कणा माना एक एक चावल के दाने का भी हिसाब देता है बड़ा। और अगर गड़बड़ की तो हिसाब लेता भी है बड़ा। हम ध्यान दें, ये भगवान का यज्ञ है और ये अनेक गरीबों के धन से चलता है, साहूकारों के धन से अभी नहीं चल रहा है, वो अंत में चलेगा। अब ये गरीबों के धन से चलता है तो हमारा भी पुण्य बने, उनका भी पुण्य बने, कुछ भी वेस्ट ना हो। मान लो लाइट ही जल रही है और जल रही है सारी रात, बेकार जल रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें भी काउंट होती हैं हमारे पुण्यों में। तो जितना हम अब यज्ञ का ध्यान देंगे, बाबा हमारा ध्यान रखेगा। बाबा ने कहा ना, यज्ञ रच कर बाबा ने तुम ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया है। अब ब्राह्मणों का कर्तव्य है यज्ञ की पूरी संभाल करना, सुरक्षा भी करना, संभाल भी करना। अगर यज्ञ में कोई चोरी कर ले, सोचने की बात है, तो उसका तो महापाप बन जाता है, भगवान की दृष्टि उससे हट जाएगी। अच्छा, उसको क्या मिलेगा? उसने थोड़ी बहुत चोरी कर ली, कुछ खरीद लिया, ले लिया, क्या मिलेगा उससे? भगवान की नजर हट गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो हम अपने पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें, तन से भी पुण्य करें, मन से भी, धन जिसके पास जो है उससे भी, संबंधों में भी, दूसरों को सुख देकर, सुभावनाएं देकर, दूसरों के कष्ट हर के, हम सभी को सुख देकर पुण्यों का खाता बढ़ाएं, तो जन्म जन्म का हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। लास्ट बात, वरदान सदगुरु से। बहुत अच्छा ध्यान दें इस पर। हम अपने परम सदगुरु से, कौन है हमारा परम सदगुरु? स्वयं भगवान। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन उनके पास सदगति का मार्ग नहीं है। स्वयं गुरुओं को भी जो सदगति देने वाला है, परम सदगुरु सुप्रीम, स्वयं भगवान, वो हमें रोज सवेरे वरदान देते हैं। किन्हीं मिलते हैं वरदान? एक दो बात सुन ले आप बाबा की ही। जो बच्चे लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनकी बुद्धि में वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। ईश्वरीय नशा, कौन पढ़ा रहा है, कौन मिला है, कौन हमारा साथी बना है, किसने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने किसका हाथ पकड़ा है। बहुत अच्छा ईश्वरीय नशा जो चिंतन से प्राप्त होता है, उसमें रहने से हमारी बुद्धि वरदानों को धारण करने में सक्षम हो जाएगी, कैपेबल हो जाएगी। तो रोज सवेरे हम बाबा के पास जाएं, उसको इस रूप से याद करें, वो परम सदगुरु है, वरदाता है, और फील करें उसने मस्तक पर तिलक लगाकर मुझे ये वरदान दिया। एक वरदान को 7 दिन तक लेंगे। सबसे सुंदर वरदान है विघ्न विनाशक भव, क्योंकि सबके विघ्नों को हमें नष्ट करना है। श्रेष्ठ योगी भव, विजयी भव, विजयी माना माया पर विजयी, ऐसे एक एक वरदान रोज हम सवेरे लेंगे, उसके नशे में रहेंगे, हमें विश्वास हो जाए कि डायरेक्ट शिव बाबा से हमें ये वरदान मिल चुका है, अब हमें इसको विश्व कल्याण में यूज करना है। हमारे वरदान हमारे लिए कम, संसार के लिए ज्यादा कल्याणकारी होंगे। तो सदगुरु से हमें वरदान मिलेंगे, उसके पास जाकर बैठें, विशेष रूप से सूक्ष्म वतन में उसे मुलाकात करें, दृष्टि लें। फिर मैं रिपीट कर दूं, मैंने पहले भी बताई है, बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लें और संसार को दृष्टि दे, पूर्वज के नशे में स्थित होकर, तो हमारे पुण्य ही पुण्य जमा होंगे, हमारी दृष्टि से फैलने वाले वाइब्रेशंस न जाने किस किस का कल्याण करेंगे। ओम शांति।